मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 17 सितंबर 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सबने रानू मंडल जी का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि इनका नाम कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ है। रानू मंडल बेसिकली कलकत्ता की हैं और वे वहीं आसपास के क्षेत्रों में शहर में लता मंगेशकर जी का घूम घूम करके एक गीत गाया करती थीं और उसी से जो राशि मिलती थी उससे अपना जीवन यापन करती थीं। और लता मंगेशकर जी का जो गाया हुआ गीत वो गाती थीं वो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुरीले अंदाज में लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। यदि आप लोगों को मौका मिले तो इस गीत को जरूर सुनिएगा, आप देखेंगे कि आप रोमांचित हो उठेंगे। खैर, तो जब रानू मंडल जी के इस गीत को किसी ने रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर डाला तो देखते ही देखते रानू मंडल यूं कह लीजिए कि लोगों की नज़र में आ गई, उनको लोगों ने अपने दिलों में जगह दी और इतनी जगह दी कि बाद में हमारे जो हिमेश रेशमिया जी हैं उन्होंने उनको अपना एक जो म्यूजिकल वो प्रोग्राम रिलीज करने जा रहे हैं उस तक में उन्होंने मौका दिया। तो यानी यूं कह लीजिए कि अब जो रानू मंडल हैं वो एक एस्टैब्लिश नेम हो गई हैं और हमारे देश की एक अच्छी गायिकाओं में शुमार होने की उनकी संभावना है। तो दोस्तों, यह एक घटना थी। इसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा कि लता मंगेशकर जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मतलब कहा क्या, यूं कह लीजिए कि रानू मंडल जी को एक तरीके से सलाह दी और वो ये कि ज्यादा अच्छा होगा कि वे मौलिक गीत गाएं, मौलिक बने, ये बात उन्होंने कही। और जैसे ही उनका यह स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से लता मंगेशकर जी के इस वक्तव्य का विरोध होने लगा, जिसे हम सब आज की भाषा में कहते हैं कि ट्रोलिंग होने लगी। अलग अलग तरीके से लोग इस वक्तव्य की व्याख्या करने लगे, कुछ लोग कहने लगे कि लता मंगेशकर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कुछ लोग कहने लगे कि ये उनके ईगो को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लता मंगेशकर जैसा गाना संभव नहीं है, तुम क्यों ऐसी कोशिश कर रही हो, इस तरह से उसकी व्याख्याएं होने लगी। तो दोस्तों, बस केवल इसी तथ्य को आज केंद्र में रखकर मैं अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, लता मंगेशकर जी क्या है, मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ी सी इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब हम कोई भी बात कहते हैं तो क्या जो बात कही गई है जिसके बारे में हम अब अपनी बात कह रहे हैं उसे हम सही संदर्भों में समझ रहे हैं या यूं ही बस कहने के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं। लता मंगेशकर जी क्या है, लता मंगेशकर हमारे देश की रत्न है। आज उनकी उम्र 90 साल की है और पूरा देश उनके नाम से ही आप यूं कह दीजिए कि श्रद्धा नत हो जाता है। वो बेसिकली एक साधिका है, साधिका, संगीत की साधिका, अद्भुत व्यक्तित्व, राइट। उन्होंने एक बात कही और वो बात ये थी कि मौलिक बने। अब मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछता हूं कि यदि वो ये बात कह रही हैं तो क्या गलत कह रही है, सलाह दे रही है, यूं कह लीजिए कि एक उभरती हुई गायिका को सलाह दे रही हैं या अपनी छोटी बहन को सलाह दे रही हैं या इसके माध्यम से वो पूरी पीढ़ी से मुखातिब हो रही हैं और कह रही हैं किसी के पीछे मत चलो, किसी का फॉलोअर मत बनो, किसी की नकल मत उतारो, मौलिक बनो। वो ये बात कह रही हैं। दोस्तों, थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ विचार कीजिए कि क्या वो गलत कह रही हैं, जो वो सलाह दे रही हैं वो सलाह किस मायने में गलत है। उसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि नहीं नहीं, तुम अरे मेरे जैसा कौन गा सकता है, बेकार की कोशिश मत करो, अपने जैसा गाओ वही बहुत होगा। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं। लता मंगेशकर के जो व्यक्तित्व को जानता है, जो उनके बारे में थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, वो बहुत उदार मना है, बहुत ही ज्यादा उदार मना। वो न तो उनमें इस तरह का ईगो है कि मेरे जैसा कोई गा ही नहीं सकता और न किसी तरह का उन्हें अपने बारे में भ्रम है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं गा सकता। अगर आप थोड़ा सा भी विश्लेषण करेंगे तार्किक रूप से तो आपको पता लगेगा। आप देखिए कि एक समय ऐसा था 1980 से पहले कि आप गायकी को देख लीजिए कि गायन पर, फिल्मी उद्योग के गायन पर, सुगम संगीत पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार था, वही लोग हर गाने गाते थे। लेकिन आप देखिए कि सन 2000 के बाद खासकर नए नए गायक, नई नई गायिकाएं आ रही हैं, नई नई आवाज आ रही है, नए नए लोगों को लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये जो मैं नए 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 कह रहा हूं या हमारी पसंदगी के जो आधार नया बन रहा है वो नया क्या है? मौलिकता ही तो है ना। और सच पूछिए तो जो प्रकृति है मित्रों, हम सबको प्रकृति ने यूनिक ही बनाया है, अद्वितीय बनाया है। आपके जैसा, दूसरे जैसा, तीसरे जैसा, मेरे जैसा, किसी के भी जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। कार्बन कॉपी हो सकता है, दूसरे के जैसा हो सकता है, लेकिन दूसरा बिल्कुल ज्यों का त्यों नहीं हो सकता। हम सब की क्वालिटी बिल्कुल यूनिक होती है। ये बात अलग है कि चेहरे मोहरे से एक जैसा दिखा तो हमने मान लिया कि वो बिल्कुल वैसा ही है, बात व्यवहार से वो उसके जैसा लग गया तो हम समझ लेते हैं कि वो वैसा ही है, उसके जैसा ही है। लेकिन मित्रों वो वैसा नहीं है। जैसा तो हो सकता है लेकिन वह बिल्कुल ज्यों का त्यों नहीं है, क्योंकि प्रकृति कभी भी डुप्लीकेट काम नहीं करती। वो एक बार किसी को गढ़ती है, किसी को बनाती है, और फिर जिस सांचे से उसने किसी को गढ़ा और बनाया है उस सांचे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती है, और फिर उस सांचे को कभी बनाती भी नहीं है, उस सांचे की वो तलाश नहीं करती, उस सांचे को तोड़ने का उसको अफसोस भी नहीं होता, जानबूझकर वो उस सांचे को तोड़ देती है ताकि मैं जब भी गढ़ूं, जब भी रचूं तो नया कुछ रचूं, नया कुछ गढ़ूं। आप कभी प्रकृति में जाकर के देखिए, एक पेड़ को जाकर के देखिए, आप ध्यान से देखने पर पता लगेगा। उनके पत्तों को देखिए, उनकी डालों को देखिए और जानने की कोशिश कीजिए। एक फूल के पौधे को देखिए, उसके एक एक फूल को जानने और समझने की कोशिश कीजिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, तो आप पाएंगे कि पेड़ तो एक ही है लेकिन इसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है। हाँ, दूर से देखने पर आपको जरूर लगेगा कि सब पत्ते एक जैसे ही तो हैं। कभी आकार में भिन्नता मिलेगी, कलर में भिन्नता मिल जाएगा, और कुछ में भिन्नता, लेकिन हर पत्ता अपने आप में अलग होगा, हर फूल अपने आप में अलग होगा। तो आप कल्पना करके देखिए कि जब प्रकृति के साथ जहां इतनी सारी वैविध्यताएं हैं वहां प्रकृति नएपन का निर्माण कर सकती है तो क्या मनुष्य में वह नयापन नहीं डाल सकती? क्योंकि मनुष्य में नयापन डालने का तो सबसे बड़ा तत्व उसके पास है, बुद्धि, विवेक, चेतना, जो अनंत है, जिसका विस्तार इतना अधिक है कि वो कभी खत्म होता ही नहीं, तो वहां तो गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों उसी को सच पूछिए तो लता जी ने हम सबको याद दिलाया है, वो रानू मंडल के माध्यम से हम सबसे यही कह रहे हैं कि हम सबके अंदर एक यूनिकनेस है और हमें अपने उस यूनिकनेस को डिस्कवर करना चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए, और तलाश करने के बाद उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वही हमारी स्थायी पहचान को बनाए रख सकेगा। अदरवाइज तो फिर ये है कि ठीक है, हम दूसरों की नकल करके थोड़ी देर के लिए तालियां बटोर लेंगे, थोड़ी देर के लिए आय भी अर्जित कर लेंगे, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम एक अध्याय के रूप में दर्ज हो सके, सिर्फ उल्लेख भर भले ही हो जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही है उस बात के लिए हम सबको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करके सही मायने में उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करनी चाहिए कि उन्होंने जो बात कही है, हम सबको जो याद दिलाया है, इसके लिए हम सब उनके प्रति बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के अपनी इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।